ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। भोटेकोशी बाढ़ के 11वें दिन आज दो लोगों को बचाया गया सकुशल। अब तक 1,335 शव बरामद। बाढ़ से रसुआ में 41 किलोमीटर सड़क और 8 जलविद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त। त्रिशूली नदी में आई बाढ़ के कारण नुआकोट की 4 बस्तियां उच्च जोखिम में। और यमनी सेना और हूथी विद्रोहियों के बीच झड़प में कम से कम 60 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। भोटेकोशी बाढ़ में संपर्क विहीन दो लोगों को आज 11वें दिन सकुशल बचाया गया है। नुआकोट के बिदुर नगरपालिका 10 बेतरावती से 64 वर्षीय चंद्रिका श्रेष्ठ को सशस्त्र पुलिस ने घर की चौथी मंजिल से सकुशल बचाया है। बाढ़ प्रभावित बस्ती के घरों में मौजूद सामान हटाने और सहयोग के लिए पहुंची बचाव टीम ने घर के अंदर से महिला की आवाज सुनी। इसके बाद सशस्त्र पुलिस निरीक्षक सुमन बीका के नेतृत्व वाली टीम ने कीचड़ में फंसी श्रेष्ठ का सकुशल उद्धार किया। श्रेष्ठ को आगे के उपचार के लिए काठमांडू स्थित वीरेंद्र सैनिक अस्पताल ले जाया गया है। इसी तरह आज ही ऊपरी त्रिशूली 1 जलविद्युत परियोजना से 1 चीनी नागरिक को भी जीवित बचाया गया है। नेपाली सेना और दक्षिण कोरिया की डिजास्टर टीम ने आज दोपहर परियोजना की एडिट 4 सुरंग से चीनी नागरिक का उद्धार किया। नेपाली सेना के अनुसार उद्धार किए गए व्यक्ति को उपचार और आवश्यक स्वास्थ्य जांच के लिए नुआकोट के त्रिशूली स्थित मैथिली बैरक ले जाया गया है। इसी तरह कल त्रिशूली 3A की सुरंग से 2 लोगों को जीवित बचाया गया था। रसुआ के भोटेकोशी में आई विनाशकारी बाढ़ के कारण अब तक 1,335 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। ये जानकारी नेपाल पुलिस ने दी। पुलिस के अनुसार रसुआ में 160, नुआकोट में 193, धादिंग में 67, चितवन में 362, गोरखा में 74, तनहू में 38, नवलपरासी पूर्व में 222 और नवलपरासी पश्चिम में 219 शव बरामद किए गए हैं। इसी तरह कुल 1,335 शव मिले हैं। बरामद शवों की पहचान के लिए डीएनए नमूने एकत्र करने सहित आवश्यक प्रक्रिया पूरा कर अब तक 1,030 शवों का व्यवस्थापन किया गया है। पुलिस के अनुसार शवों को सुरक्षित रूप से जमीन के नीचे रखा गया है। इसी तरह मृतकों के 1,260 और उनके परिजनों के 1,012 समेत कुल 2,272 डीएनए नमूने पहचान के लिए एकत्र किए गए हैं। पहचान नहीं हो पाए 1,292 शवों का विवरण नेपाल पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। पुलिस के अनुसार बाढ़ से प्रभावित अब तक 13,098 लोगों का उद्धार किया जा चुका है, जबकि लापता 4,887 लोगों की तलाश जारी है। रसुआ के भोटेकोशी बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए आर्थिक सहायता जुटाने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री देवी प्रकोप राहत कोष और प्रधानमंत्री राहत कोष में अब तक 11,05,56,26,971 रुपए की राशि मौजूद है। प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय ने इस बात की जानकारी दी। सरकार इससे पहले इन कोषों में जमा 1 अरब रुपए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए जारी कर चुकी है। कार्यालय के अनुसार 9 बैंकों में 8,06,25,15,518 रुपए तथा हिमालयन बैंक और लक्ष्मी सनराइज बैंक में मौजूद डॉलर खातों में अतिरिक्त 1,98,37,695 अमेरिकी डॉलर जमा हुए हैं। भोटेकोशी से त्रिशूली नदी में आई बाढ़ के बाद नुआकोट के 4 बस्तियां उच्च जोखिम में आ गई हैं। नदी के लगातार कटाव से तारकेश्वर 4 के दर्शन टार्क क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं, जहां 100 से अधिक परिवार रहते हैं। बिदुर के बांद्रे और बस पार्क तथा बेलकोट गढ़ी के 26 में भी बाढ़ से नुकसान हुआ है। प्रशासन ने नदी कटाव वाले इलाकों के बस्तियों को तत्काल खाली कर सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का आग्रह किया है। बाढ़ से सड़क समेत कई सार्वजनिक और भौतिक संरचनाएं भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ के बाद लापता लोगों की पहचान के लिए नेपाल पुलिस ने नुआकोट के बिदुर में डीएनए नमूना संकलन केंद्र शुरू किया है। इससे पहले पीड़ित परिवारों को नमूना देने के लिए काठमांडू जाने की बाध्यता खत्म हो गई है। पुलिस के अनुसार नुआकोट में लापता लोगों की तलाश के लिए 2,564 आवेदन मिले हैं। अब तक 192 शव बरामद किए गए हैं, जिनमें से केवल 18 की पहचान हो सकी है। शवों की पहचान के लिए लापता लोगों के परिवार के नजदीकी रक्त संबंधियों, खासकर माता पिता या बच्चों से डीएनए नमूने लिए जा रहे हैं। भोटेकोशी बाढ़ में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले सशस्त्र पुलिस बल नेपाल के कर्मचारियों के परिवारों को 25 लाख रुपए की राहत दी जाएगी। सशस्त्र पुलिस के अनुसार मृतक कर्मचारियों के कल्याण कोष से लिए गए बकाया ऋण को भी माफ किया जाएगा और उनके बच्चों को कक्षा 10 तक नेपाल एपीएफ स्कूल में पढ़ाई के लिए शुल्क में भी छूट दी जाएगी। बाढ़ में लापता 13 सशस्त्र पुलिस कर्मियों के परिवारों को भी आवश्यक राहत उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। वहीं बाढ़ से बचने में सफल 5 सशस्त्र पुलिस कर्मियों को 50,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बाढ़ में मृत अवकाश प्राप्त सशस्त्र पुलिस कर्मी के परिवार को 1 लाख, घर से वंचित होने पर 1 लाख तथा आंशिक रूप से भौतिक क्षति झेलने वाले और घायलों को 50,000 रुपए तक तत्काल राहत दी जाएगी। सशस्त्र पुलिस ने प्रधानमंत्री देवी प्रकोप उधार कोष में महानिरीक्षक से लेकर जवान तक की ओर से 15,50,00,000 रुपए जमा करने का भी निर्णय किया है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर जी नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी नेपाल टेलिकम को 4G आफ्नो भन्य आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। कास्की के माछापुच्छे गांवपालिका एक सादल में निर्माणाधीन सुपर सिटी जलविद्युत परियोजना के एक्सेस रोड की खुदाई के दौरान आज सुबह करीब 11 बजे भूस्खलन गिरने से गंभीर रूप से घायल 2 मजदूरों की उपचार के दौरान मौत हो गई है। मृतकों की पहचान धनकुटा के पाखी बास नगरपालिका 8 निवासी और परियोजना में कार्यरत 26 वर्षीय आयुष राय तथा खोटांग के कोपिलास गड़ी गांवपालिका 1 निवासी 27 वर्षीय किसान राय के रूप में हुई है। जिला पुलिस कार्यालय कास्की के डीएसपी वीरेंद्र कुमार पासवान ने इस बात की जानकारी दी। घटना में घायल इलाम निवासी 32 वर्षीय भक्त बहादुर मगर का मणिपार शिक्षण अस्पताल में उपचार जारी है। भोटेकोशी बाढ़ से रसुआ जिले में निजी और सार्वजनिक संपत्तियों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। जिला प्रशासन कार्यालय द्वारा सार्वजनिक किए गए प्रारंभिक विवरण के अनुसार बाढ़ से 28 सरकारी एवं सार्वजनिक भवन, 8 सामुदायिक तथा 3 निजी विद्यालय, 14 बैंक एवं वित्तीय संस्था, 1 पेट्रोल पंप और करीब 1500 निजी घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। सहायक प्रमुख जिलाधिकारी ध्रुव प्रसाद अधिकारी के अनुसार बाढ़ में जिले की 41 किलोमीटर सड़क, 6 पक्के पुल, 8 बेलीब्रिज और 10 झुलुंगे पुल बह गए हैं। इसी तरह भोटेकोशी और त्रिशूली नदियों तथा लांगटांग खोला पर निर्मित 8 जलविद्युत परियोजनाएं पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुई हैं। इसी बीच अब तक बाढ़ के कारण रसुआ के 1,365 नागरिक, अन्य जिलों के 1,160 नागरिक और 264 पर्यटक लापता हैं। सहायक प्रमुख जिलाधिकारी ने बताया कि बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के 26 कर्मचारी, 79 सरकारी कर्मचारी, 13 सशस्त्र पुलिसकर्मी, 28 नेपाल पुलिसकर्मी और 27 नेपाली सेना के जवान भी लापता हैं। बाजरा में बीरे खोला झरने में भीषण बाढ़ आने से 23 परिवार विस्थापित हो गए हैं। शुक्रवार रात से हुई लगातार बारिश के बाद बीरे खोला में अचानक तेज बाढ़ आई। बताया गया है कि ऊपरी क्षेत्र में भूस्खलन के कारण नदी का बहाव रुक रुक कर तालाब बन गया था और उसके टूटने के बाद बाढ़ आ गई। बाढ़ से कोई मानवीय क्षति नहीं हुई है लेकिन 41 परिवार प्रभावित हुए हैं और 18 परिवार अब भी जोखिम में हैं। विस्थापित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बाढ़ से एक मछली तालाब, 2 पानी की घटियां और बीरे खोला झरने के टिकट काउंटर को नुकसान पहुंचा है। वहीं धान की फसल वो बह जाने से खेत बंजर हो गए हैं। हुमला के जिला मुख्यालय सीमकोट में बिजली सेवा अनिश्चितकाल के लिए बाधित हो गई है जिससे आम लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। नेपाल विद्युत प्राधिकरण के हेल्दुम वितरण केंद्र के पावर हाउस में खराबी के कारण 16 भाद्र से बिजली आपूर्ति बंद है। पावर हाउस की यूनिट 9 के कंट्रोल सिस्टम में समस्या आने के बाद ये स्थिति बनी है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। यमन में सरकार समर्थित सेना और ईरानी समर्थित हुती विद्रोहियों के बीच दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में हुई भीषण झड़पों में 60 से अधिक लोगों की मौत हुई है। मृतकों में सैनिक, हुथी लड़ाके और आम नागरिक भी शामिल हैं। सैन्य सूत्रों के अनुसार 26 सरकारी सैनिक और 31 हुथी लड़ाके मारे गए हैं। वहीं ताइज शहर में एक मिसाइल हमले में बस से यात्रा कर रहे 6 नागरिकों की भी मौत हुई है और 7 अन्य घायल हुए हैं। झड़पें मुख्य रूप से ताइज और लाल सागर के तटवर्ती इलाकों में हुई हैं। हुथी विद्रोही ताइज को अल मोखा से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क तथा लाल सागर के प्रवेश द्वार बाब अलमंदब जलडमरू मध्य के आसपास रणनीतिक इलाकों पर नियंत्रण हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हाल के दिनों में संघर्ष तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए इससे पहले गुरुवार से शुरू हुई लड़ाई में 120 से अधिक लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट सामने आई थी। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भोटे कोशी बाढ़ के 11वें दिन आज 2 लोगों को बचाया गया सकुशल। अब तक 1,335 शव बरामद। बाढ़ से रसुआ के 41 किलोमीटर सड़क और 8 जलविद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त। त्रिशूली नदी में आई बाढ़ के कारण नुआकोट की 4 बस्तियां उच्च जोखिम में। और यमनी सेना और हुथी विद्रोहियों के बीच झड़प में कम से कम 60 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।